दानियल की पुस्तक संख्या 121 अंतिम दिनों के संकेतों का उद्घाटन, वसंत में कोंपले फूटे पेड़ों की ओर मसीह के संकेतों को समझना।
मसीह ने अपने लोगों का ध्यान वसंत में कोंपले फूटते पेड़ों की ओर दिलाया ताकि वे अंतिम दिनों के चिन्ह और उन चिन्हों के निहितार्थ को समझ सके।
मसीह ने अपनी प्रजा को अपने आगमन के चिन्हों पर ध्यान रखने और जब वे अपने आने वाले राजा के संकेत देखें तो आनंदित होने की आज्ञा दी थी। जब ये बातें होने लगीं, उन्होंने कहा, तो ऊपर देखो और अपने सिर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा उद्धार निकट है। उन्होंने अपने अनुयायियों का ध्यान वसंत ऋतु में कोंपले निकालते पेड़ों की ओर दिलाया और कहा, जब वे अब कोंपले निकालते हैं तो तुम स्वयं देखते और जान लेते हो कि अब ग्रीष्म निकट है। उसी प्रकार तुम भी जब तुम इन बातों को घटित होते देखो तो जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। लूका 21:28-31 महान विवाद 308।
अंतिम दिनों के चिन्ह उन चिन्हों द्वारा प्रतीकित थे जिन्होंने प्रथम स्वर्गदूत के आंदोलन की घोषणा की और उसे आरंभ कराया। उन चिन्हों में आकाश का कंपना शामिल था, परंतु योएल ये बताता है कि अंतिम दिनों के चिन्ह वे दिन जब इसराइल की अधर्मता ढूंढी जाएगी और नहीं मिलेगी, जब परमेश्वर का पवित्र पर्वत सदा के लिए पवित्र होगा, क्योंकि कोई परदेसी फिर कभी उसमें से नहीं गुजरेगा, स्वर्ग की शक्तियों के हिलने के साथ साथ पृथ्वी की शक्तियों के हिलने को भी शामिल करेंगे। बहन व्हाइट स्वर्ग की शक्तियों के हिलने और पृथ्वी की शक्तियों के हिलने के बीच का भेद स्पष्ट करती हैं।
सेक्शन दिसंबर 1828 को प्रभु ने मुझे आकाश की शक्तियों के हिलने का दर्शन कराया। मैंने देखा कि मत्ती, मरकुस और लूका द्वारा लिखे गए चिन्ह बताते समय जब प्रभु ने आकाश कहा तो उनका अर्थ आकाश ही था, और जब उन्होंने पृथ्वी कहा तो उनका अर्थ पृथ्वी ही था। आकाश की शक्तियां सूर्य, चंद्रमा और तारे हैं, ये आकाश में शासन करते हैं। पृथ्वी की शक्तियां वे हैं जो पृथ्वी पर शासन करती हैं। परमेश्वर की वाणी से आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तब सूर्य, चंद्रमा और तारे अपने स्थानों से हटा दिए जाएंगे। वे नष्ट नहीं होंगे, परंतु परमेश्वर की वाणी से हिला दिए जाएंगे। काले भारी बादल उभर आए और आपस में टकरा गए। आकाशमंडल दो भागों में बैंठकर पीछे हट गया। तब हम ओरायन में बने खुले स्थान के माध्यम से ऊपर देख सकते थे, जहां से परमेश्वर का स्वर आया। पवित्र नगर उसी खुले स्थान से नीचे उतरेगा। मैंने देखा कि पृथ्वी की शक्तियां अब हिलाई जा रही हैं और घटनाएं क्रमशः घटती हैं। युद्ध और युद्ध की अफवाहें, तलवार, अकाल और महामारी सबसे पहले पृथ्वी की शक्तियों को झकझोरेंगे, फिर परमेश्वर का स्वर सूर्य, चंद्रमा और तारों को और इस पृथ्वी को भी हिला देगा। मैंने देखा कि यूरोप में शक्तियों का हिलना, जैसा कि कुछ लोग सिखाते हैं, स्वर्ग की शक्तियों का हिलना नहीं है, बल्कि वो क्रोधित राष्ट्रों का हिलना है। प्रारंभिक लेखन 41।
मत्ती, मरकुस और लूका में वर्णित आकाश का कंपना उन शक्तियों के कंपने का प्रतिनिधित्व करता है जो आकाश पर शासन करती हैं, जिन्हें सूर्य, चंद्रमा और तारों द्वारा दर्शाया गया है। ये सभी आकाशीय शक्तियां कंपित हुई और उन्होंने वे चिन्ह प्रकट किए जिन्होंने पहले स्वर्गदूत के आंदोलन का आरंभ कराया और उसकी घोषणा की। उन आकाशीय शक्तियों को तीसरे स्वर्गदूत के आंदोलन के दौरान फिर से कंपाया जाएगा, परंतु तीसरे स्वर्गदूत के आंदोलन में पृथ्वी की शक्तियां भी कंपाई जाएंगी। पृथ्वी की शक्तियां वे हैं जो पृथ्वी पर शासन करती हैं। 11 सितंबर 2001 को आकाश की नहीं बल्कि पृथ्वी की शक्तियां कंपित हुईं।
क्या अब ये कहा जा रहा है कि मैंने ये घोषणा की है कि न्यूयॉर्क ज्वारीय लहर द्वारा बहा दिया जाएगा? ये मैंने कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि जब मैं वहाँ एक के ऊपर एक उठती हुई उन विशाल इमारतों को देख रही थी, तब मैंने कहा, जब प्रभु पृथ्वी को भयंकर रीति से कंपित करने के लिए उठ खड़ा होगा, तब कितने भयानक दृश्य घटित होंगे। तब प्रकाशित वाक्य 18:1-3 के वचन पूरे होंगे। प्रकाशित वाक्य का समस्त 18वां अध्याय इस बात की चेतावनी है कि पृथ्वी पर क्या आने वाला है, परंतु न्यूयॉर्क पर विशेष रूप से क्या आने वाला है, इसके विषय में मुझे कोई विशेष प्रकाश नहीं मिला है। केवल इतना मैं जानती हूँ कि एक दिन वहाँ की वे विशाल इमारतें परमेश्वर की शक्ति के पलटने और उलटने से ढा दी जाएंगी। मुझे दिए गए प्रकाश से मैं जानती हूँ कि संसार में विनाश उपस्थित है। प्रभु का एक वचन, उसकी सामर्थ्यवान शक्ति का एक स्पर्श और ये विशाल संरचनाएं गिर पड़ेंगी। ऐसे दृश्य घटित होंगे जिनकी भयावहता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रिव्यू एंड हेरल्ड, जुलाई 5, 1906।
मिलराइट्स के इतिहास में लूका द्वारा दर्ज किए गए चिन्हों में से एक था राष्ट्रों का संकट। राष्ट्र पृथ्वी पर शासन करने वाली शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 11 सितंबर 2001 को तीसरी विपत्ति भविष्य सूचक इतिहास में प्रवेश करते ही पृथ्वी का हर राष्ट्र हिल गया। वो सांसारिक हिलना लूका 21 में दर्शाया गया था, परंतु बाइबली अभिव्यक्ति पृथ्वी की शक्तियों के हिलने के रूप में नहीं, उसे राष्ट्रों का संकट वाक्यांश द्वारा व्यक्त किया गया था, जैसा कि तब विश्व के राष्ट्रों पर आया जब न्यूयॉर्क की विशाल इमारतें ढहा दी गई। लूका में राष्ट्रों का संकट पृथ्वी की शक्तियों के हिलने का ही संकेत है और ये मिलराइट्स के इतिहास में पूरा हुआ।
मैंने देखा कि पृथ्वी की शक्तियां अब कंपित की जा रही हैं और घटनाएं क्रमबद्ध रूप से घटित हो रही हैं। युद्ध और युद्ध की अफवाहें, तलवार, अकाल और महामारी सबसे पहले पृथ्वी की शक्तियों को कंपा देंगी, फिर परमेश्वर की वाणी सूर्य, चंद्रमा और तारों को और इस पृथ्वी को भी कंपा देगी। मैंने देखा कि यूरोप में शक्तियों का ये कंप, जैसा कि कुछ सिखाते हैं, आकाश की शक्तियों का कंप नहीं है, बल्कि वो क्रोधित राष्ट्रों का कंप है। अर्ली राइटिंग्स, एटाइट्स।
क्रोधित राष्ट्रों की शक्तियों का हिलना पृथ्वी की शक्तियों का हिलना ही है, जैसा कि एडवेंटवाद के प्रारंभिक इतिहास में यूरोप की शक्तियों के हिलने से स्पष्ट होता है। यूरिया स्मिथ ने ये पहचाना कि 1836 में यूरोप की शक्तियों को क्या हिला रहा था।
जैसे इस छठी तुरही की भविष्यवाणी की अवधि की शुरुआत पूर्व के ईसाई सम्राट द्वारा स्वेच्छा से शक्ति तुर्कों के हाथों में सौंप देने से हुई, वैसे ही हम उचित रूप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उसका समापन भी तुर्की सुल्तान द्वारा उसी शक्ति को स्वेच्छा से वापस ईसाइयों के हाथों में सौंप देने से चिन्हित होगा। 1838 में तुर्की मिस्र के साथ युद्ध में उलझ गया। मिस्रियों के पास तुर्की सत्ता को उखाड़ फेंक देने की प्रबल संभावना थी। इसे रोकने के लिए यूरोप की चार महाशक्तियां इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया तुर्की सरकार को बनाए रखने हेतु हस्तक्षेप किया। तुर्की ने उनके हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया। लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें मिस्र के पाशा मेहमेत अली को प्रस्तुत किए जाने के लिए एक अल्टीमेटम तैयार किया गया। ये स्पष्ट है कि जब ये अल्टीमेटम मेहमेत के हाथों में दिया जाएगा, तब ओटोमन साम्राज्य का भाग्य व्यावहारिक रूप से यूरोप की ईसाई शक्तियों के हाथों में सौंप दिया जाएगा। ये अल्टीमेटम 11 अगस्त 1840 के दिन मेहमेत के हाथों में रखा गया और उसी दिन सुल्तान ने उन चार शक्तियों के राजदूतों को एक पत्र भेजकर पूछा कि यदि मेहमेत उनके प्रस्तावित शर्तों का पालन करने से इनकार कर दे तो क्या किया जाना चाहिए। उत्तर ये था कि उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति को लेकर उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए उन्होंने प्रबंध कर रखा था। भविष्यवाणी की वो अवधि समाप्त हो गई और उसी दिन मुस्लिम मामलों का नियंत्रण ईसाइयों के हाथों में चला गया, ठीक वैसे ही जैसे 399 वर्ष और 15 दिन पहले ईसाई मामलों का नियंत्रण मुसलमानों के हाथों में चला गया था। इस प्रकार दूसरी विपत्ति समाप्त हुई और छठी तुरही का बजना थम गया। उरिया स्मिथ, सिनॉप्सिस ऑफ प्रेजेंट ट्रूथ, 318।
दूसरी विपत्ति का इस्लाम अपनी शक्ति के शिखर को पार कर चुका था, जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार 391 वर्ष और 15 दिन तक चलना था। फिर भी 1830 के दशक में मिस्र मुस्लिम इतिहास के दूसरे महान जिहाद को जारी रखने के उद्देश्य से मिस्र में एक खिलाफत को फिर से स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। अधिक इस्लामी युद्ध की संभावना यूरोपीय शक्तियों को भय से कंपा रही थी। कई दशकों तक इस्लाम द्वारा अपने युद्ध को फिर से भड़काने के इस संकट को उन वर्षों के इतिहासकारों और संवाददाताओं ने पूर्वी प्रश्न का नाम दिया। पूर्व के लोगों का युद्ध सदियों तक यूरोप के उन राष्ट्रों के विरुद्ध चलता रहा जिनका धर्म रोमन चर्च से निकला था। 1838 में मसीह द्वारा उल्लिखित
जातियों का संकट उन क्रोधित राष्ट्रों की डगमगाहट का प्रतिनिधित्व करता था जो इस्लाम द्वारा भूतपूर्व रोमन साम्राज्य के विरुद्ध लाए गए युद्ध के कारण उत्पन्न हुई थी।
महान नदी यूफ्रेटिस में बंधे हुए चार स्वर्ग दूतों को मुक्त करने से मेरी समझ में इसका अर्थ ये है कि ईश्वर अब उन चार प्रमुख राष्ट्रों को, जिनसे उस्मानी साम्राज्य बना था, जिन्होंने व्यर्थ ही कॉन्स्टेंटिनोपल में पूर्वी साम्राज्य को वश में करने का प्रयत्न किया था और यूरोप को जीतने में बहुत कम प्रगति की थी, अब कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करने और यूरोप के एक तिहाई भाग पर आक्रमण कर उसे अधीन करने की अनुमति देने वाले थे। और ऐसा ही 15वीं शताब्दी के मध्य के आसपास हुआ था। विलियम मिलर की कृतियां, खंड 2, 110।
लुका के वर्णन में राष्ट्रों का संकट भ्रम के साथ समुद्र और लहरों का गरजना और मनुष्यों के भय से हृदय बैठ जाना और उन बातों की आशंका करना जो पृथ्वी पर आने वाली है था। पूर्वी प्रश्न की उलझन 20वीं शताब्दी तक विश्व की शक्तियों को विचलित करती रही और उस संकट का प्रतीक था भय से मनुष्यों के हृदय बैठ जाना और समुद्र और लहरों का गरजना।
यह परमेश्वर के सेवकों पर की जाने वाली वही मुहर बंदी है जो यहेजकेल को दर्शन में दिखाई गई थी। यूहन्ना भी इस अत्यंत विस्मयकारी प्रकाशन का साक्षी रहा था। उसने समुद्र और उसकी लहरों को गर्जना करते देखा और मनुष्यों के हृदय भय के कारण विफल होते हुए देखे। उसने पृथ्वी को हिलते हुए और पर्वतों को समुद्र के बीच में डाले जाते हुए देखा, जो शाब्दिक रूप से घटित हो रहा है, उसके जल को गरजते और उद्वेलित होते हुए और पर्वतों को उसके उफान से कांपते हुए देखा। उसे विपत्तियां, महामारी, अकाल और मृत्यु को अपना भयानक कार्य पूरा करते हुए दिखाया गया। Testimonies to Ministers 445।
जब यूहन्ना को 144,000 की मूरबंदी दिखाई गई, तब उसने राष्ट्रों की व्याकुलता देखी, जिसे समुद्र और लहरों का गरजना तथा भय के कारण लोगों के हृदयों का टूट जाना दर्शाते हैं। और ये वही मुहरबंदी थी जो यहेजकेल को 9वें अध्याय में दिखाई गई थी। यहेजकेल को मुहरबंदी के आंतरिक तत्व दिखाए गए और यूहन्ना को मुहरबंदी से संबंधित बाहरी तत्व दिखाए गए। यूहन्ना ने देखा कि राष्ट्रों का भड़कना 144,000 की मुहरबंदी से जुड़ा है और राष्ट्रों का यही भड़कना लूका में वर्णित राष्ट्रों की व्याकुलता भी है, जिसे ऐतिहासिक रूप से पूर्वी प्रश्न के रूप में पहचाना जाता है। यूहन्ना को दिखाया गया कि तीसरी हाय का इस्लाम 144,000 की मुहरबंदी का बाहरी चिन्ह है।
वर्तमान समय सब जीवित लोगों के लिए अत्यंत गंभीर रुचि का समय है। शासक और राजनेता, विश्वास और अधिकार के पदों पर आसीन पुरुष तथा सभी वर्गों के विचारशील स्त्री पुरुष अपने चारों ओर घटित हो रही घटनाओं पर अपना ध्यान लगाए हुए हैं। वे उन तनावपूर्ण और अशांत संबंधों को देख रहे हैं जो राष्ट्रों के बीच विद्यमान हैं। वे उस तीव्रता को देखते हैं जो प्रत्येक सांसारिक तत्व पर अधिकार करती जा रही है और वे पहचानते हैं कि कोई महान और निर्णायक घटना घटित होने ही वाली है, कि संसार एक महानतम संकट के कगार पर है। स्वर्गदूत अब संघर्ष की वायुओं को थामे हुए हैं ताकि वे तब तक न चलें जब तक संसार को उसके आने वाले विनाश के विषय में चेतावनी न दे दी जाए। परंतु एक तूफान एकत्र हो रहा है जो पृथ्वी पर फूट पड़ने को तैयार है, और जब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को वायुओं को छोड़ देने की आज्ञा देगा, तब ऐसा संघर्ष का दृश्य उपस्थित होगा जिसका चित्रण कोई लेखनी नहीं कर सकती। बाइबल और केवल बाइबल ही इन बातों का सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। यहाँ हमारे संसार के इतिहास के महान अंतिम दृश्य प्रकट किए गए हैं। ऐसी घटनाएं जो पहले ही अपनी छाया आगे डाल रही हैं, उनके आगमन की आहट से पृथ्वी कांप उठती है और भय के कारण मनुष्यों के हृदय चूक जाते हैं। शिक्षा वसत्यरहार वसत्यसी।
लूका अध्याय 21 में यीशु ने उन चिन्हों की पहचान की जो मिलराइट आंदोलन की शुरुआत का कारण बने, और सिस्टर व्हाइट के अनुसार वे सभी चिन्ह पूरे हो चुके हैं। लिस्बन का भूकंप, अंधकारमय दिन, सितारों का गिरना और राष्ट्रों का क्लेश, जो पृथ्वी की शक्तियों के हिल जाने का प्रतिनिधित्व करता था और जो पूर्वी प्रश्न से उत्पन्न भय के माध्यम से इस्लाम द्वारा पूरा हुआ, ये सब पूरे हो चुके हैं। मिलराइट चिन्हों में मनुष्य का पुत्र का बादल के साथ आना भी शामिल है, जो उसी क्रम में पूरा हुआ जिसमें ये चिन्ह मसीह ने दिए थे। क्योंकि 1850 में उस्मानी प्रभुत्व पर अंकुश लगने के साथ राष्ट्रों का क्लेश समाप्त होने के बाद 22 अक्टूबर 1854 को मसीह अति पवित्र स्थान में आए, और जब वे आए तो वे बादलों के साथ आए।
और देखो, मनुष्यपु बाद के समान एक स्वर्ग के बादलों के साथ आया, और वो अनादिकालीन के पास आया और उसे उसके सम्मुख ले आए, और उसे प्रभुत्व, महिमा और राज्य दिया गया, ताकि सब लोग, जातियां और भाषाएं उसकी सेवा करें। उसका प्रभुत्व अनंतकालीन प्रभुत्व है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। दानियल 7:13-14। यहां वर्णित मसीहों का आगमन पृथ्वी पर उनका दूसरा आगमन नहीं है। वो स्वर्ग में अनादिकालीन के पास प्रभुत्व, महिमा और राज्य प्राप्त करने के लिए आते हैं, जो उन्हें मध्यस्थ के रूप में अपने कार्य के अंत में दिया जाएगा। यही आगमन और पृथ्वी पर उनका दूसरा एडवेंट नहीं, भविष्यवाणी में 1814 में 130 दिनों की समाप्ति पर होने के रूप में बताया गया था। स्वर्गदूतों के साथ हमारे महान प्रधान याजक परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं और वहां परमेश्वर की उपस्थिति में प्रकट होते हैं, ताकि मनुष्यों की ओर से अपनी याजकीय सेवा के अंतिम कार्यों में प्रवृत्त हों, अन्वेषणात्मक न्याय का कार्य करने और उन सब के लिए प्रायश्चित करने के लिए जिन्हें उसके लाभों के अधिकारी ठहराया गया है। महान संघर्ष 74:71।
मिलरवादियों के इतिहास से जुड़े चिन्ह 144,000 के इतिहास से जुड़े चिन्हों के प्रतिरूप थे, जब मसीह ने दृष्टांत के द्वारा उस ऐतिहासिक वर्णन की दूसरी गवाही दी, तो उन्होंने अपने शिष्यों का ध्यान वसंत में कौंपले निकालते पेड़ों की ओर दिलाया। उन्होंने उन्हें बताया कि जब पेड़ों में कौंपलें फूटने लगती हैं, तो तुम जानते हो कि तुम संसार के अंत के निकट हो, और वो पीढ़ी जो वसंत में कौंपले निकालते पेड़ों की साक्षी बनेगी, जीवित रहकर उसके दूसरे आगमन की ज्वालाओं में आकाश और पृथ्वी के टल जाने को देखेगी।
जब वे अब कौंपले निकालते हैं, तो तुम स्वयं देखकर जान लेते हो कि अब ग्रीष्म निकट है। उसी प्रकार जब तुम इन बातों को घटित होते देखो, तो जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक ये सब बातें पूरी न हो जाएं, ये पीढ़ी नहीं बीतेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। लूका 21:33।
तब प्रश्न ये होता है, कब से पेड़ों में नई कोपले फूटने लगी? अंतिम वर्षा 11 सितंबर 2001 को फुहारे पड़ने लगी, जो यशाया के अनुसार परमेश्वर की पूर्वी पवन के दिन की कठोर पवन का दिन है।
माप माप करके जब वो फूटेगा, तू उससे वाद विवाद करेगा। वो पूर्वी पवन के दिन अपनी कठोर वायु को रोक रखता है, अतः इसी से याकूब का अधर्म शुद्ध किया जाएगा, और उसका पाप दूर करने का सारा फल यही है कि जब वो वेदी के सब पत्थरों को ऐसे चूना पत्थर कर देगा जो टुकड़े टुकड़े करके कूटे गए हों, तब उपवन और प्रतिमाएं फिर खड़ी न रहेंगी, तथापि किलेबंद नगर उजाड़ होगा और निवास स्थान त्यक्त होकर जंगल के समान छोड़ दिया जाएगा। वहां बछड़ा चरेगा, वहीं लेट जाएगा और उसकी डालियां खा जाएगा। जब उसकी डालियां सूख जाएंगी, तब वे तोड़ी जाएंगी, स्त्रियां आएंगी और उन्हें आग में झोंकेंगी, क्योंकि ये समझहीन लोग हैं। इसलिए जिसने उन्हें बनाया, वो उन पर दया न करेगा, और जिसने उन्हें रचा, वो उन्हें अनुग्रह न दिखाएगा। और उस दिन ऐसा होगा कि प्रभु नदी की धारा से लेकर मिस्र की धारा तक झाड़ेगा, और हे इसराइल के पुत्रों, तुम एक एक करके बटोरे जाओगे। और उस दिन ये होगा कि बड़ा नरसिंगा फूंका जाएगा, और जो अश्शूर देश में नाश के निकट थे और जो मिस्र देश में निर्वासित थे, वे आकर यरूशलेम में पवित्र पर्वत पर प्रभु की आराधना करेंगे। यशाया 27:13।
अंतिम वर्षा का छिड़काव मापा हुआ 11 सितंबर 2001 को प्रारंभ हुआ, और अंतिम वर्षा के संदेश तथा नकली शांति और सुरक्षा के संदेश के विषय में बहस शुरू हुई। उस बहस का इतिहास वही है जहां याकूब का अधर्म दूर किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, अर्थात प्रायश्चित किया जाता है। उस बहस का इतिहास जो हबक्कूक की बहस है, 144,000 के मुहरबंद किए जाने का काल है, जो इस पर समाप्त होता है कि
कि लाओदीकिया के सप्तम दिवसीय एडवेंटिस्ट को प्रभु के मुख से उगल दिया जाएगा, क्योंकि वो सुरक्षित नगर होकर भी उजाड़ हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसे लोगों का नगर बन चुका था जिनमें समझ नहीं है, जो न दया पाते हैं न कृपा। उसी समय प्रकाशित वाक्य 18 की दूसरी आवाज एक बड़ी तुरही फूंकेगी, जो सातवीं तुरही और तीसरा हाय है, और परमेश्वर का अन्य झुंड यरूशलेम में आकर आराधना करेगा, जो तब विजयी कलीसिया का आंदोलन बन चुका होगा। 11 सितंबर 2001 ये दर्शाता है कि पृथ्वी के इतिहास की अंतिम पीढ़ी आ गई है, और केवल वे ही जो वसंत में कोंपलाते पेड़ों के संकेत को पहचानते हैं उस वर्षा को प्राप्त करेंगे जो पेड़ों में कोंपले निकलने का कारण बन रही है। केवल वे ही जो ये पहचानते हैं कि तीसरी विपत्ति का इस्लाम ही अंतिम वर्षा के आगमन और 144,000 की मुहरबंदी का संकेत है, उसी समूह में होंगे।
केवल वे ही जो अपने पास के प्रकाश के अनुरूप जीवन जीते हैं और अधिक प्रकाश प्राप्त करेंगे। जब तक हम सक्रिय ईसाई सद्गुणों के आचरण में प्रतिदिन प्रगति नहीं कर रहे हैं, हम अंतिम वर्षा में पवित्र आत्मा की अभिव्यक्तियों को पहचान नहीं पाएंगे। संभव है कि वो हमारे चारों ओर के हृदयों पर बरस रही हो, परंतु हम न तो उसे पहचानेंगे और न ही उसे ग्रहण करेंगे। टेस्टिमनीज टू मिनिस्टर्स 5:7। हमें अंतिम वर्षा की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, वो उन सब पर आने वाली है जो हम पर गिलती अनुग्रह की ओस और बौछारों को पहचानते और अपनाते हैं। जब हम प्रकाश की बिखरी किरणों को समेटते हैं, जब हम परमेश्वर की अटल करुणाओं की कद्र करते हैं जिसे ये प्रिय है कि हम उस पर भरोसा रखें, तब हर प्रतिज्ञा पूरी होगी। क्योंकि जैसे पृथ्वी अपने अंकुर उगाती है और जैसे बगीचा उसमें बोई हुई वस्तुओं को अंकुरित करता है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धर्म और स्तुति को अंकुरित करेगा। यशाया 61 के अलावा संपूर्ण पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भर दी जाएगी। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट बाइबल कमेंट्री, खंड 7, 994।
हम अगले लेख में अध्ययन जारी रखेंगे।
जब तक वे लोग जो सहायता कर सकते हैं अपने कर्तव्य की भावना से जागृत नहीं होते, तब तक जब तीसरे स्वर्गदूत की ऊंची पुकार सुनी जाएगी, वे परमेश्वर के कार्य को नहीं पहचानेंगे। जब प्रकाश पृथ्वी को प्रकाशित करने के लिए निकलेगा, तो प्रभु की सहायता के लिए आगे आने के बजाय वे अपने संकीर्ण विचारों के अनुकूल बनाने हेतु उसके कार्य पर बंधन लगाना चाहेंगे। मैं तुम्हें बता दूं कि इस अंतिम कार्य में प्रभु सामान्य व्यवस्था से बहुत हटकर और किसी भी मानव योजना के विपरीत रंग से काम करेगा। हमारे बीच ऐसे लोग होंगे जो हमेशा परमेश्वर के कार्य को नियंत्रित करना चाहेंगे, यहाँ तक कि ये भी निर्देश देंगे कि कौन से कदम उठाए जाएं। जब ये कार्य उस स्वर्गदूत के निर्देशन में आगे बढ़ेगा जो संसार को दिए जाने वाले संदेश में तीसरे स्वर्गदूत के साथ जुड़ता है, परमेश्वर ऐसे तरीकों और साधनों का उपयोग करेगा जिनसे ये दिखाई देगा कि वो लगाम स्वयं अपने हाथों में ले रहा है। उसके धार्मिकता के कार्य को घटित करने और सिद्ध करने के लिए वो जिन सरल साधनों का उपयोग करेगा, उनसे कार्यकर्ता आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मंत्रियों के लिए साक्ष्य 300।